शांति। शिव बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है, कहते हैं ईश्वर सत्य है। तो पहला जो टाइटल ही है सत्यम, सत्य से ही शुरू होता है, तो इसीलिए बाबा को सच्चाई सफाई पसंद है। इसीलिए कहा सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। तो वो हमारा सत बाप है, सत शिक्षक है, सत गुरु है, सत चित आनंद स्वरूप है बाबा। और सत्य के लिए ही कहते हैं कि वो हमें सत्य ज्ञान देते हैं, जिससे ही सतयुग आता है, यानी सत्य का युग आता है, उसको सच खंड कहते हैं। और शिव बाबा हमें सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं, और उस कथा से ही हम सतयुग में श्री नारायण श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति करते हैं। तो ये सब सत्य बाबा सुनाते हैं, जो ज्ञान है। पहला सत्य ज्ञान बाबा ने दिया, मैं देह नहीं आत्मा हूं। तो आत्मा सत्य है। सत्य शब्द के दो अर्थ हैं, एक है अविनाशी और दूसरा है सच। तो जो अविनाशी है सदा है वो सत्य है। तो आत्मा सदा है, शरीर तो विनाशी है, तो आत्मा शरीर बदलती रहती है। तो आत्मा को सत्य स्वरूप से समझा हमने, जो आज तक हमें कोई भी वेदों शास्त्रों या जितने भी पुराण हुए, ये सत्य ज्ञान आत्मा का ज्ञान है। लेकिन आत्मा के सत्य स्वरूप का, जन्मों का, निवास स्थान का, ये सारा ज्ञान बाबा ने हमें दिया। फिर स्वयं बाबा सत्य हैं, वो जो हैं, जैसे हैं, निराकार हैं, परम धाम निवासी हैं, उनको वैसा ही जानकर याद करना वो राजयोग है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ करके मुझ परमात्मा को याद करो। तो यथार्थ याद वो याद है जो सत्य ज्ञान पर आधारित है। ऐसे दुनिया में भी भगवान को याद करते हैं सब, लेकिन अपनी अपनी रीति से करते हैं, तो वो राजयोग या सत्य याद नहीं है। लेकिन हम बाबा को सत्य ज्ञान के आधार पर याद करते हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट वर्षे के अधिकारी बनते हैं और मुक्ति, जीवन मुक्ति या गति सदगति के अधिकारी बनते हैं। इसको बाबा कहते हैं एक सेकंड में हमको जीवन मुक्ति मिल जाती है। तो सत्य का महत्व ना, कैसे बाबा राजी होता है अगर हम सच्चाई सफाई से चलते हैं। तो सत्यता का या सच्चाई सफाई का मतलब है कि हम स्वयं से भी सच्चे हैं, बाबा से भी सच्चे हैं, और आपस में जब हम व्यवहार में आते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, तो उसमें भी सच्चाई सफाई है, तब बाबा राजी होता है। तो बाबा से सच्चे होना यानी जो भी कोई गलती हमसे होती है, बाबा की श्रीमत के प्रमाण कर्म नहीं हुआ, अभी हम पुरुषार्थी हैं तो बाबा ने तो हमें अमृत वेले से रात तक क्या बाबा की श्रीमत है, आज्ञा है, वो बताया है। और उस अनुसार अगर हम कहीं माया के वश हो जाते हैं, आलस्य अलबेलेपन में आ जाते हैं, तो बाबा क्या कहते हैं, सच सच सुना दो, यानी रोज रात को चाट देकर सोना है। तो बाबा को अगर हमने सच सुनाया, कई बार भाई बहने सोचते हैं बाबा को तो सब पता है ना, तो फिर सुनाने की क्या जरूरत है। तो क्या जरूरत है सुनाने की? क्योंकि जब हम सुनाते हैं, विधि बाबा ने क्यों रखी है? क्योंकि जब हम बाबा को सुनाते हैं तो उसे हम महसूस करते हैं, अपनी गलती को महसूस करते हैं, तो रियलाइजेशन से परिवर्तन होता है। फिर सुनाएंगे तो आधा माफ होगा, ये भी विधि बाबा ने रखी है कि अगर हमने सुना दिया तो क्योंकि जो हमने विकर्म बनाया वो आधा खत्म हो जाता है, माफी मिल जाती है उसकी, और बाकी के लिए बाबा हमें शक्ति भी देते हैं। तो इसीलिए रोज चार्ट रखना है हमें, बाबा को सच सच सुनाना है, छिपाना नहीं है। बाबा से छिपाने का तो कोई अर्थ ही नहीं है, कोई छिप सकता है बाबा से? छिप सकता है क्या? हम अपने आप से छिपा सकते हैं, दूसरों से छिपा सकते हैं। तो जो रोज बाबा को चार्ट देते हैं, एक होता है लिखना, तो लिखने में मैं समझती हूँ मेजॉरिटी अलबेले होते हैं, बहुत कम होते हैं कोटों में कोई जो लिखते हैं। हाँ, इस सभा में है कोई जो लिखते हैं? वो हाथ उठाए। हाँ, गिनती के हैं, गिन सकते हैं आराम से, 10-15 हैं। लेकिन जो देते हैं, माना रू रिहान करते हुए बाबा को सुना देते हैं, ऐसे भी देते हैं हम चार्ट, तो जो ऐसे दे करके फिर सोते हैं वो हाथ उठाए। हाँ, वो मेजोरिटी है। अब हम ये तो नहीं पूछेंगे कि कोई देते नहीं है चार्ट वो हाथ उठाओ, क्योंकि उनको फिर हाथ उठाने में शर्म आएगी। लेकिन अगर हम नहीं देते हैं तो जरूर ये हमें नियम बना लेना चाहिए कि सोने से पहले हमें बाबा को अपना चार्ट देना है। फिर जो भी है, अगर अच्छा भी है तो भी, और अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो वो भी हमें बाबा को जरूर बताना है। लेकिन हमारा मन ये साफ होना चाहिए, सोने से पहले हमारा चार्ट क्लीन होना चाहिए, ये बाबा ने हमें विधि दी है। तो बाबा के साथ सच्चे रहना। फिर व्यवहार में जो सच्चे रहने की बात है, सच्चाई सफाई का अर्थ है मन में किसी के प्रति भी छल कपट नहीं, ना धोखे की बात, हेरा फेरी करना, किसी के साथ ठगी करना, या अंदर एक बाहर दूसरा ऐसा व्यवहार करना, ऐसे बहुत लोग करते हैं। सामने बहुत अच्छे होते हैं, माना मीठा बोलेंगे, बहुत मधुर व्यवहार करेंगे, और पीठ पीछे, आज की मुरली चली ना, सारी मुरली किस पर थी? निंदा करना। ज्यादातर अवगुण देख लेते हैं हम, तो उसको बताए बिना, एक दो से चर्चा किए बिना फिर रहते नहीं हैं। तो अगर हम ऐसे हैं ना, कई बार जैसे सुनाते हैं कि मानो हमारे घर में अचानक कोई आ गया, तो सामने से तो हम बहुत मुस्कुराते हुए स्वागत कर रहे हैं, और अंदर में क्या सोच रहे हैं, इनको इसी टाइम आना था, हमारा तो अभी दूसरा प्रोग्राम है, अब ये पता नहीं कब जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, सामने कुछ और अंदर अंदर कुछ हो गया। तो इसको हम सच्चाई सफाई वाला व्यवहार नहीं कहेंगे। तो जितना हमारे मन में स्वच्छता है, यानी दूसरों के प्रति शुभ भावना है, सरलता है, तो उतना ही संबंध में भी समीपता होगी, जिसको कहते हैं मन से समीप अनुभव करेंगे। लेकिन अगर मन में कुछ और है तो व्यवहार में भले ही कितने अच्छे हैं, लेकिन दूरी होगी, वो समीपता का अनुभव नहीं होगा। अगर ऐसे लोगों से हमारी दोस्ती है मानो, तो वो टिकेगी नहीं। मन में अगर सफाई के बजाय ईर्ष्या, द्वेष है ना, कोई भी नेगेटिव फीलिंग है किसी के प्रति, नाराजगी भी हम जिसको कह सकते हैं, या फिर जैसे कहा है ना कि धोखा देते हैं, सामने दिखाते हैं कि बहुत विश्वास है ना, लेकिन पीठ पीछे धोखा देते हैं, तो फिर इसको हम संबंधों में सच्चाई नहीं कहेंगे। और बाबा कहता है सच तो बीठो नच। तो जो सच्चाई सफाई वाला होगा वो सदा खुश रहेगा, सदा प्रसन्न चित होगा, उसके मन में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होगी, किसी भी प्रकार की उलझन नहीं होगी, अशांति नहीं होगी, वो निर्भय होगा। नहीं तो झूठ वाले को क्या करना पड़ता है, अपने झूठ को छुपाने के लिए सोचना पड़ता है कि मैं ये बोलूंगा वो बोलूंगा। तो सच्चाई होनी चाहिए, बाबा को वही पसंद है, लेकिन हम रहते तो कलयुग में हैं और इतने जन्मों से 63 जन्मों से जो देह अभिमान के संस्कार चले आ रहे हैं, तो सच्चाई के रास्ते पर चलना इतना आसान हमें नहीं लगता है ना। आज कलयुगी दुनिया के लिए हम क्या कहते हैं, झूठ खंड है, झूठ खंड है, माना झूठ के बिना चलता नहीं है काम। तो कोई ऐसा नहीं होगा कलयुग में जो ये कहे कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, कह सकते हैं। हाँ, इस सभा में कोई समझता है कि मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, हाथ उठा सकते हैं अगर कोई ऐसे ऐसे कोई हो भी सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी थे ना, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी अपने जीवन में कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने सत्यवादी हरिश्चंद्र जी का नाटक देखा, प्रसिद्ध है वो, इतिहास में प्रसिद्ध है। तो नाटक देखने के बाद उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि चाहे जो हो जाए जिंदगी में, कोई मुश्किल हो, लेकिन झूठ नहीं बोलना है, और उन्होंने उसको निभाया। तो सुनाते हैं, एक बार क्लास में एक इंस्पेक्शन चल रहा था, तो स्पेलिंग लिखने को दी सभी स्टूडेंट्स को, कैटल की स्पेलिंग लिखनी थी, और भी बहुत सारे वर्ड्स थे पर उनकी जो गलत थी वो कैटल, जिसमें हम पानी उबालते हैं, वो कैटल की स्पेलिंग गलत थी। तो टीचर ने देखा कि सबने तो सही लिखा है, लेकिन ये मोहन, उनका नाम मोहन था ना, मोहनदास, तो ये मोहन ने ठीक नहीं लिखा है, इसका एक लेटर ठीक नहीं है। तो उन्होंने उसको इशारा किया कि तेरे सामने वाले ने ठीक लिखा है, तुम उनमें से नकल करके अपना करेक्ट कर लो। तो उन्होंने देखा टीचर को, समझा भी कि टीचर क्या कहना चाह रहा है, लेकिन किया नहीं, करेक्शन नहीं किया। अब इंस्पेक्शन में तो हो गया, उनका गलत था वो स्पेलिंग, और बाद में टीचर ने उनको पूछा, मैंने तेरे को इशारा किया फिर भी तुमने ठीक क्यों नहीं किया, तो उसने कहा कि ये गलत होता, और मैंने अपने जीवन में प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी भी झूठ का सहारा नहीं लूंगा, तो इसीलिए भले ही आपने कहा मुझे, लेकिन मैंने उसको ठीक नहीं समझा, सत्य नहीं समझा, इसीलिए मैंने वो नहीं किया। तो ऐसे भी दुनिया में लोग होते हैं। हमारी दादी जी थी, दादी प्रकाशमणि जी, दादी हमेशा जब भी यहाँ पे जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस होती थी तो दादी ये बात बहुत गर्व से कहती थी कि मैंने जिंदगी में आज तक झूठ नहीं बोला, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया। लेकिन कलयुगी दुनिया तो वैसे झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, ये वाली दुनिया है। तो जब हम ब्राह्मण बन गए तो वैसे तो सच्चाई सफाई ये हमारा निजी संस्कार है, सत्यता, लेकिन फिर भी पूरी तरह से हम भी सच्चाई पर नहीं चल पाते, क्योंकि सच की राह मुश्किल होती है। इसीलिए कहते हैं सत्य की नाव हिलती है डुलती है, है ना। तो वो हिलना डुलना मतलब जो उसके लिए कष्ट उठाने पड़ते हैं, जो तकलीफें सहन करनी पड़ती हैं, उतना हिम्मत सब नहीं रख पाते, तो थोड़ा बहुत झूठ का सहारा लेते हैं ब्राह्मण बनने के बाद भी। लेकिन इसकी भाषा को हम थोड़ा बदल देते हैं, क्या भाषा बोलते हैं, थोड़ा युक्ति से चलना पड़ता है ना, युक्ति से नहीं चलेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो अगर हमने अपने स्वार्थ के लिए बोला और अपने को बचाने के लिए बोला, अब दो तरह का झूठ होता है, एक होता है कल्याण के लिए हम झूठ बोलते हैं, अपना ही कल्याण हो या दूसरों का कल्याण करना हो, जैसे बाबा हम बच्चों के लिए आज तक कहते आए, है ना, उसमें कल्याण था, इसीलिए कहते आए कि विनाश होना है, तो आज तक बाबा ने समय नहीं बताया, तो हमें पता नहीं कब विनाश होना है, लेकिन वो विनाश विनाश करते करते कितने साल निकल गए, कितने साल निकल गए, 88 साल निकल गए। तो कई बार हुआ इस सन में हो जाएगा, इस सन में हो जाएगा, लेकिन वो विनाश नहीं हुआ। तो उसमें हमारा कल्याण समाया हुआ है कि हम बाबा के बने, अपने अपने कल्याण के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और बाबा से अपना भाग्य बना रहे हैं। तो ऐसे ही मानो आपके घर वाले हैं, ज्ञान में नहीं चलते और आपको छुट्टी नहीं देते, और अगर आप छुट्टी लेने जाएंगे तो घर में अशांति हो जाती है, कलह हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं, युक्ति से चलते हैं। जैसे माताएं कहीं सुनाती है हमको कि बहन जी हमारा बहुत बंधन है, तो हमको मधुबन आना है, तो हम कहते हैं कि हम मायके जा रहे हैं ना, या कोई भी रिश्तेदार के घर जाना है उसके घर जा रहे हैं, और आ जाते हैं कहाँ, मधुबन आ जाते हैं। तो हमको बाबा के घर आना है, अपने मधुबन घर आना है, बाबा से मिलन मनाना है, तो ये युक्ति हमें अपनानी पड़ती है। तो वो ठीक है, उसको हम गलत नहीं कहेंगे या वो पाप हो गया या विकर्म हो गया, नहीं, क्योंकि उसी में हमारा कल्याण है। जैसे हम वो कहानी बताते हैं कि भाई एक गाय भाग रही थी, उसके पीछे कसाई को एक ने देखा गाय इस गली में गई। कसाई ने उसको पूछा, तुमने गाय को देखा? तो उसने क्या कहा, नहीं देखा, क्योंकि वो समझ गया कि अगर मैंने बता दिया तो ये गाय को कत्ल कर देगा, और वो नहीं चाहता था कि गाय की हत्या हो। तो ऐसा झूठ जिसमें कल्याण है ना, उसने उसके जीवन बचाने का एक शुभ भाव रखा, तो उसको हम पाप नहीं कहते या विकर्म नहीं कहते। लेकिन अब मेरे से कोई गलती हो गई या मेरी कोई कमी है, और उसको हम छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, क्योंकि उसके लिए फिर झूठ बोलना पड़ेगा। सच बोलेंगे तो मेरा नाम कहीं मुझे कम नहीं समझा जाए, मेरा नाम खराब ना हो जाए, कहीं मैं इनकी नजरों में गिर ना जाऊं, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, है ना। इस तरह से जब हमें भय लगता है, कोई भी ऐसी गलती हो गई जो नहीं होनी चाहिए, तो व्यवहार में बाबा को तो हम बता देते हैं, लेकिन व्यवहार में आपस में अगर वो हमें बताने की जरूरत है तो हम झूठ बोलते हैं, अपने को बचाते हैं। तो बाबा कहता है ठीक है, आपने झूठ बोला, अपने को बचा लिया, तो आपस में तो आपने अल्प काल की वो प्राप्ति कर ली ना, आपका मान जो है वो रह गया, आपको सही समझा गया। लेकिन शिव बाबा से तो हम नहीं छिपा सकते ना, तो फिर शिव बाबा के दिल पर जो हमें चढ़ना चाहिए, एक तो बाबा के दिल पर नहीं, फिर दूसरा जो हमारी अविनाशी कमाई जमा होनी चाहिए थी सत्य बोलने से, वो कमाई का भी नुकसान हमने किया। तो अल्प काल की प्राप्ति करते हुए सदा काल की प्राप्ति को हमने गंवा दिया, और कई बार उसमें ही हम बहुत खुश होते हैं कि देखो कितना अच्छी तरह से मैंने अपने आप को बचा लिया, किसी को भी पता नहीं चला, है ना, इस तरह से सोचते हैं। तो इसीलिए इस तरह की चतुराई करना, बाबा कहते चतुराई से बातें बहुत बनाते हैं, बातें बनाने में तो होशियार है ना, क्योंकि द्वापर युग से ही बाबा कहते हैं कथा कहानियां करने की आदत होती है, तो कई लोग बहुत चतुर होते हैं बातों को बनाने में। फिर हम नौकरी धंधे में रहते हैं, कई नौकरियां ऐसी होती हैं या बिजनेस ऐसा होता है, झूठ बोले बिना कोई प्रॉफिट नहीं होता। फिर अगर हमारे अंदर अभी कोई लोभ का अंश है, अब पूरी तरह से मायाजीत तो नहीं बने हैं, कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है, थोड़ा लोभ होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, कमाएंगे कैसे, कमाना है, घर चलाना है, तो फिर थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। अब वकीलों का जो धंधा होता है वो तो झूठ पर ही चलता है, झूठ को सच, सच को झूठ बनाना पड़ता है, तभी केस जीत सकते हैं। तो कई बार कईयों ने पूछा हमसे कि क्या ऐसा कर सकते हैं, तो बाबा इसके लिए क्या कहते हैं, बाबा की श्रीमत होती है कि जैसे बाजार में मानो आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसके एक रेट होते हैं, माना एक सीमा होती है कि इस सीमा तक हम किसी भी चीज का ले सकते हैं, थोड़ा बहुत तो हम प्रॉफिट लेंगे ही ना, तभी तो चलेगा। लेकिन अगर हमारा मन खाता है कि हम किसी से इतना लेते हैं कि हमें ये फील होता है कि हमने गलत किया, तो उतना वो हमें नहीं करना चाहिए। भले हमें कम प्रॉफिट हो, लेकिन जिस चीज को मेरा दिल स्वीकार करता है वैसा ही कार्य हम करें। और अगर कोई हमारा पेशा ऐसा है कि जिसमें बहुत ही ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है, तो फिर उसे हम बदल लें, हम उसको चेंज करें, तो ज्यादा अच्छा है, उसमें हमारा कल्याण होता है। तो लेकिन झूठ का सहारा लेकर के हम अपना फायदा करें, जैसे आज दुनिया में बाजार में है ना, हम देखते हैं मिलावट करते हैं लोग और काला बाजारी करते हैं ना, कितना खाने पीने की चीजों में, हर चीजों में आज बहुत मुश्किल है कि आपको बिल्कुल शुद्ध चीज कोई मिलेगी। तो क्यों करते हैं ये सब? धन का लोभ है कि ये कर लो तो ज्यादा से ज्यादा हम कमाएंगे। लेकिन हम बाबा के बच्चे, हमें पता है कि विनाशी धन और अविनाशी धन दोनों में अंतर है। तो हमें विनाशी धन के पीछे ऐसे नहीं जाना है कि हम वो अविनाशी कमाई जो है हमारी उससे वंचित हो जाए। तो अगर बाबा हमसे राजी हैं, हम सच्चाई सफाई पर हैं और बाबा हमसे राजी हैं, तो उसकी निशानियां हैं। उन निशानियों से हम समझ सकते हैं कि वो सच्चा साहब राजी है हम पर। तो वो दाता है, भाग्य विधाता है और वरदाता है। तो दाता है माना वो जो देने वाला है, उसके भंडारे हैं, वो सदा भरपूर हम महसूस करेंगे। तो ज्ञान, गुण, शक्तियां, ये बाबा के खजाने हैं। तो हम ज्ञान के खजाने, गुणों के खजाने, शक्तियों के खजानों से भरपूर होंगे। कभी भी कोई भी ज्ञान का गुह्य राज मुझे नहीं मालूम है, ऐसा नहीं महसूस होगा।
अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में अब तुम्हें आना। सतयुग में अब तुम्हें आना है,
तो सदा ही ज्ञान से संपन्न अपने को अनुभव करेंगे। गुण और शक्तियां परसेंटेज में हो सकती हैं, लेकिन ये भाषा कभी नहीं होगी कि ये गुण नहीं है मेरे अंदर, ये शक्ति की कमी महसूस होती है, नहीं। तो इनमें संपन्नता का अनुभव, इन खजानों की संपन्नता का अनुभव होगा बाबा अगर राजी है तो। फिर बाबा भाग्य विधाता हैं, भाग्य विधाता ने हमें भाग्य दिए हैं जो वर्तमान भी हैं और 21 जन्म तक हम उसमें संपन्न रहते हैं। तो वो भाग्य कौन कौन से हैं? तन मन धन और जन की संपूर्ण प्राप्ति, जैसे कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तन का भाग्य क्या है? स्वस्थ तन हो हमारा, निरोगी तन हो। अब संगम युग में हम ये अपेक्षा करें कि तन में कभी कोई रोग होगा ही नहीं, तो संभव नहीं है, क्योंकि तमो प्रधान तत्वों से बना हुआ अभी हमारा शरीर है और अभी सारे हिसाब किताब भी हमको चुकतू करने हैं। लेकिन भाग्य की निशानी क्या है? बाबा राजी है, उसका क्या भाग्य होगा कि तन का हिसाब किताब कभी भी हमारे प्राप्ति में और पुरुषार्थ में बाधा नहीं बनेगा, कभी भी हमें वो सेवा से वंचित नहीं होने देगा। माना बीमारी आएगी, छोटी मोटी बीमारी आई, हमने इलाज किया और हम अपना काम भी कर रहे हैं, अपनी सेवा भी कर रहे हैं और साथ में हिसाब किताब भी चुकतू हो रहा है। तो कहते हैं कर्म भोग को हम कर्म योग में बदल लेते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि दोनों तरह से हिसाब किताब आ सकते हैं, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उसको वर्णन करते हैं। हाँ, मेरे को ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा लग रहा है, हाँ मानो सिर दर्द ही हुआ। तो जब तक वो चार लोगों को अपना सिर दर्द के बारे में बता नहीं देंगे, तब तक उनको हल्का नहीं लगेगा। अब हमने जब वर्णन किया इतना, तो हमने कौन सी लहर फैलाई? वो दुख की लहर को हमने अनेक लोगों तक फैला दिया। तो बाबा ने कहा उसको हम विस्तार करते हैं तो हम हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, फिर उसका खुद भी चिंतन करते हैं, पता नहीं मुझे ये तो नहीं हो गया। अब सिर दर्द कई कारण से हो सकता है ना? तो जब तक वो डायग्नोसिस नहीं हुआ तब तक शक में आते रहते हैं, कहीं दिमाग के अंदर कुछ तो नहीं हो गया, कहीं आंखों के अंदर कुछ तो नहीं हो गया, हाँ ये क्या हो गया, जो भी सीने में थोड़ा सा भी दर्द हुआ तो ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। तो अगर हम बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचते हैं तो हम बीमारी को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर विस्तार को सार में ले आए, अब जो भी हुआ पता है कि आया है, हिसाब किताब खत्म तो होना ही है, तो उसकी सब विधियां पता है, डॉक्टर को दिखाओ, इलाज कराओ, अपना योग बल प्रयोग करो। जितना हम सोल कॉन्शियस स्टेज में रहेंगे, जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, उतना जल्दी वो सूली से कांटा होकर खत्म हो जाएगा। तो बीमारी कॉन्शियस नहीं बनना है। अगर बीमारी आती है तो हम बीमारी कॉन्शियस नहीं, लेकिन सोल कॉन्शियस रहकर बाबा को याद करते हैं तो बाबा की भी दुआएं मिलती हैं और सहज ही वो कर्म योग हमारा, कर्म भोग हमारा चुकतू हो जाता है। और बाबा कभी भी हमें दवाइयां लेने के लिए भी मना नहीं करते। बाबा क्या कहते हैं, ये दवाइयां क्या हैं? कलयुगी फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है। जैसे वो ड्राई फ्रूट अलग अलग कलर के होते हैं, ऐसे गोलियां भी होती हैं, कोई लाल कोई पीली कोई नीली होती है। तो दवाई भी अगर ले रहे हैं तो नेगेटिव सोच कर नहीं खाना है, इतनी दवाई खानी पड़ रही है, पता नहीं कब तक खानी पड़ेगी, क्यों खा रहे हैं हम या जो भी, लेकिन ये समझ कर खाना है कि ये दवाई मुझे ठीक करने वाली है, स्वस्थ बनाने वाली है, यही मुझे शक्ति देने वाली है और ये दवाई लेकर हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो बाबा को याद करके जो भी मेडिसिन लेनी पड़ रही है उसको हम लेंगे तो वो हमारे शरीर को ज्यादा लगेगी और हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। और बाबा कहते हैं ऐसी आत्माएं हिसाब किताब के समय भी सेवा के निमित्त बन जाएंगी। कई बीमारियां होती हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, जैसे गुलजार दादी जी हमारे, वैसे भी दिल्ली जोन है और दादी जी दिल्ली जोन के ही इंचार्ज थे, तो दादी जी का जब बॉम्बे में ऑपरेशन हुआ था तो उस ऑपरेशन से जो सेवा हुई जिस डॉक्टर ने किया, डॉक्टर अशोक मेहता जो भी पुराने अपनी भाई बहने हैं वो जानते हैं लेकिन शायद नए भाई बहने न जानते हों, तो डॉक्टर अशोक मेहता निमित्त बने और जब वो दादी जी से मिले और दादी जी का व्यवहार उन्होंने देखा वो इतने प्रभावित हुए, क्योंकि दादी को वो जब पूछते थे दादी आप कैसे हैं तो दादी उनको आगे से पूछती थी डॉक्टर आप कैसे हैं, माना कभी वो कंप्लेन नहीं करते थे कि मेरे को दर्द हो रहा है या तकलीफ हो रही है। और उन्हें देखा और पेशेंट्स के पास मैं जाता हूँ तो कोई ना कोई कंप्लेंट है उनकी, ना ये तकलीफ है वो तकलीफ है ये कब ठीक होगा, लेकिन दादी कोई कंप्लेन नहीं करती है। तो ऐसे तो पता था कि ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से है ना, जो भी ड्रेस वगैरह थी उससे वो समझते थे, लेकिन इतनी पावर है इनके अंदर वो उनको बहुत प्रभावित करने वाला रहा। और फिर उन्होंने जब दादी से बात की और दादी ने उनको निमंत्रण दिया मधु बनाने का तो वो यहाँ आए और यहाँ जब देखा ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल पर है, ये हेडक्वार्टर है, तो फिर उन्होंने अपनी राय दी कि यहाँ एक अस्पताल होना चाहिए क्योंकि इतने लोग यहाँ आते हैं, किसी को भी कोई अचानक तकलीफ होती है तो उनको इलाज मिले, ऐसी सुविधा यहाँ होनी चाहिए। और फिर जब निर्वैर भाई जी से बात हुई, दादी जी से बात हुई तो वो भी इससे सहमत हुए और ग्लोबल हॉस्पिटल का कंसेप्ट माना उसके बाद ये हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट आया और ग्लोबल हॉस्पिटल बना। फिर ग्लोबल हॉस्पिटल से इतने डॉक्टर्स की सेवा हुई कि वो केवल एक हॉस्पिटल नहीं, फिर दिल्ली में एक बड़ा, बॉम्बे में एक बड़ा हॉस्पिटल लिया गया, अभी भी वो हॉस्पिटल है BACS हॉस्पिटल, जो सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल है जहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं हैं। फिर यहाँ शांतिवन में और विस्तार हुआ, ट्रॉमा सेंटर बना, ऑप्थेल्मिक इंस्टीट्यूट बना, देखो कितनी सेवा हुई। एक दादी जी थोड़ा बीमार हुए, डॉक्टर ने उनका इलाज किया और वो निमित्त बन गए। और फिर केवल यही नहीं कि वो कोई स्नेही सहयोगी रहे लेकिन वो बाबा के वारिस बच्चे बने, अभी पूरी तरह से वो बीके हैं और अभी भी आते हैं, हालांकि अब उनकी आयु बहुत अधिक हो गई है, अभी 80 साल के लगभग उनकी आयु है तो अभी वो रिटायर हैं, लेकिन फिर भी जो भी सहयोग वो ग्लोबल हॉस्पिटल में जब आते हैं पेशेंट्स के लिए दे सकते हैं तो वो देते हैं। तो कहने का भाव क्या है, हमने दादियों को देखा, हिसाब किताब उन्होंने भी चुपटू किया ना, हमारे सब महारथी भाई बहने हम सब जानते हैं कि सबके हिसाब किताब चुपटू होते हैं, 84 जन्मों से आत्मा ना इस शरीर में है, इस चक्र में है, लेकिन उनका हिसाब किताब चुपटू करने का तरीका है ना, उससे हम सीखते हैं कि कैसे कर्म भोग को कर्म योग में बदल करके सहज उसको पार कर लेना है। और मन का भाग्य क्या मिलता है, मन सदा हर्षित रहेगा, जैसे कहा ना सच तो बिठो नच, सदा हर्षित रहेगा, फिर कैसी भी परिस्थिति आ जाए। हमारे यादगार हैं शास्त्रों में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने सांप के ऊपर डांस किया, सांप के फन के ऊपर डांस किया, तो यानी माया कितना भी विकराल रूप धारण कर ले या कितनी भी भयानक परिस्थिति हो या संबंध कितने भी परेशान करने वाले हों, तो जैसे विष्णु जी को शेष शैया पर दिखाया है, शेष शैया पर यानी माया को भी पांच विकार, वो माया का प्रतीक है ना, पांच फ फन वाला सांप है, सागर में विष्णु जी उसके ऊपर लेटे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं, है ना, उनका स्वरूप क्या दिखाते हैं, फिर भी हर्षित हैं। तो परिस्थितियां कितनी भयानक है, सागर है, सांप है और उसके ऊपर वो लेटे हुए हैं, लेकिन स्थिति निश्चिंत है, हर्षित है। तो सदा मन इस स्थिति में रहेगा और इच्छा मात्रम अविद्या होंगे, किसी भी व्यक्ति और वस्तु की तरफ लगाव झुकाव नहीं जाएगा, मन सहज ही मन मना भाव का स्वरूप होगा। यानी बाबा से योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन याद किया और मन बाबा में लग गया, तो ऐसे भाग्य का अनुभव करेंगे। धन का भाग्य तो बाबा ने हमें ज्ञान धन दिया है, तो जैसे बताया सत्य ज्ञान की क्या महिमा है, लेकिन वो ज्ञान धन के साथ साथ स्थूल धन का भी महत्व तो है ना, स्थूल धन से ही सुख के साधन आते हैं। तो बाबा कहता है अगर ज्ञान धन हमारे पास है, हम संपन्न हैं, तो वो स्थूल धन को भी लेकर आता है, वो प्रकृति को दासी बनाता है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में बाबा हमें कोई करोड़ों पति नहीं बनाने वाले हैं, है ना, कि हम बाबा से समझें कि ये भाग्य हमें मिलेगा। क्यों नहीं बनाएंगे बाबा करोड़ों पति? बाबा ने कहा अगर इतना धन आ गया तो फिर माया लेके चली जाएगी आपको, धन के साथ फिर माया भी आती है, धन की साथी है माया। तो इसीलिए तो साहूकारों के लिए बाबा कहता है ना, बाबा तो गरीब निवास है लेकिन रहने खाने के लिए, अपने आराम से जीने के लिए जितना हमें आवश्यकता है वो सहज हमें प्राप्त होता रहेगा, उसमें कभी खींचा तान का अनुभव नहीं करेंगे। और बाबा कहता है कोई मानो स्थिति भी आ जाए तो भी दाल रोटी, अब प्राकृतिक आपदाएं हैं, कभी ये स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं, जैसे कोरोना आया तो दाल रोटी जरूर मिलेगी, है ना, 36 प्रकार का भोजन नहीं मिलेगा लेकिन वायदा है बाबा का कि दाल रोटी जरूर बाबा खिलाएगा। और फिर सेवा के लिए भी हमें धन चाहिए, हमें पता है कि हम बाबा की सेवा के निमित्त हैं, तन मन धन से हम सेवा करते हैं, तो फिर अगर सेवा के लिए हमारी सच्ची दिल है, हम ईश्वरीय सेवा में धन लगाना चाहते हैं, तो वो भी हमारे पास होगा, और नहीं तो बाबा किसी ना किसी को निमित्त बना देगा ना। जैसे टीचर्स बहने काफी अनुभवी हैं, कोई सेवा के प्रोग्राम रचते हैं और उसमें बड़ा खर्चा होता है, तो महसूस होता है कि बाबा कैसे किसको निमित्त बना देता है ना, ऐसे एक हमारा अनुभव है। मैं जब पहली बार सेंटर पर रहने के लिए आई थी, जस्ट मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर सेंटर पर ही रहने लगी थी, छोटा सेंटर था वो, क्योंकि वहां पर मेडिकल पूरा करने के बाद उस हॉस्पिटल में मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो फिर मैं सेंटर पर रहकर के ही हॉस्पिटल जाती थी। तो वहां यूथ रैली आने वाली थी और सेंटर छोटा सा था, 4-5 स्टूडेंट आते थे रोज, और रैली में ही 5-6 भाई बहने आ रहे थे और एक दिन पूरा रैली रुकने वाली थी, और सेंटर में तो एक ही कमरा था तो सेंटर पे तो ठहरा ही नहीं सकते। तो ये बात बहन जो पहले से थी वहां सेंटर पर, उसने मेरे से ये बात की कि रैली आ रही है और मेरी इच्छा तो है कि बाबा की सेवा हो, क्योंकि रैली आएगी तो शहर में सेवा होगी, लेकिन उसकी व्यवस्था करना मुश्किल है, हमारे पास इतना प्रबंध तो है नहीं। तो उसने मेरे को कहा हम बाबा को योग लगाते हैं, तो आज हम खास वो रैली के निमित्त हम योग में बैठेंगे। तो हमने वो योग किया और दूसरे दिन एक भाई आए, माना ऐसे होता है ना, ये शहर के लोग बाहर बिजनेस करते हैं, बड़े शहरों में बिजनेस करते हैं, लेकिन कभी कभी फिर अपने वो मतलब डिस्ट्रिक्ट नहीं था, तहसील था, तो वो वहां आए अपने स्थान पर और बहन जी से उनका परिचय था, तो उन्होंने आकर के उनको पूछा, मिले उनको और फिर बातचीत में ही कहा कि कोई सहयोग की जरूरत हो तो बताना हमको। तो उन्होंने कहा ये तो आपने अच्छा कहा, सचमुच हमें आपका सहयोग चाहिए। तो उस शहर के समझो वो नामी ग्रामी थे, तो उन्होंने कहा रैली आ रही है और उस रैली को रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था चाहिए, उनका प्रोग्राम करना है, उसके लिए हॉल की व्यवस्था चाहिए, ये सारा कुछ प्रबंध करना है, लेकिन हम देख रहे हैं अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो उन्होंने कहा बहन जी आप चिंता ही मत करो, मुझे पता है कौन सी धर्मशाला, उसमें हॉल भी है, उसमें लोग रह भी जाएंगे, खाने पीने का जो चाहिए आप मेरे पर छोड़ दो। तो देखिए मिनट में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और सारा उन्होंने किया, इतनी अच्छी रैली हो गई। तो बस सच्ची दिल है हमारी, तो बाबा किसी ना किसी आत्मा को टच करके, क्योंकि वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो किसको टच करके भेज देता है, ऐसा अनुभव होता है। तो ऐसे धन सेवा के लिए भी कम नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मान शान की इच्छा है ना, कई दिखावे की सेवा करते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर उसके लिए बाबा बंधा हुआ नहीं है, फिर बाबा नहीं करेगा वो। और नहीं तो सेवा में तो होगा ही होगा, लेकिन भंडारा और भंडारी भी भरपूर हो जाएगा, ये भी बाबा कहते हैं कि कमी नहीं होगी आगे के लिए भी। और ऐसे ही जन का भाग्य, तो हमारे लौकिक संबंधी हैं, ईश्वरीय परिवार है, अलौकिक परिवार है, तो उसमें भाग्यवान की निशानी बाबा राजी है। उसमें क्या भाग्य हम अनुभव करेंगे कि 95% आत्माओं से हमें स्नेह मिलेगा, प्यार मिलेगा, तो ईश्वरीय प्यार का, हम रूहानी प्यार का अनुभव करते हैं ना जब हम बाबा के घर में आते हैं। लेकिन कोई 5% से हिसाब किताब भी चुप्त होगा, वो हिसाब किताब चुप्त होगा, यानी वो हमारी कोई ना कोई परीक्षा के निमित्त बनती रहती हैं, आत्माएं परीक्षा लेती रहती हैं, तो उसके कारण हम कभी थोड़ा सा दुखी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम शुभ भावना शुभ कामना से अपना हिसाब किताब चुप्त करते हैं, उसकी विधि यही है, बाबा ने जो हमें सहज विधि बताई है कि सहज रूप से जो रहा हुआ हिसाब किताब है उसे हम बाबा की याद और शुभ भावना से चुकतू करेंगे, तो वो भी जल्दी चुकतू हो जाएगा। लेकिन उनको देखकर प्रश्नों में नहीं आना है। उन आत्माओं से कई बार परेशान होकर के हम फिर सोचने लगते हैं ये ऐसे क्यों करते हैं, ये ऐसे क्यों चलते हैं, ये कब तक चलेगा, क्या मेरे ही भाग्य में ऐसा है ना। तो जब हम इसमें चले जाते हैं तो फिर हमारा समय और शक्ति व्यर्थ संकल्पों में वेस्ट होता है। किसी भी बात की फीलिंग में आ गए ना, आपसी संबंध संपर्क में अगर हम ये फीलिंग में आ गए, तो निश्चित है हमारा योग बाबा से फिर टूट जाता है और उस आत्मा से। दो तरह से हम किन्हीं भी आत्माओं के प्रभाव में आते हैं, एक तो एक्स्ट्रा स्नेह में जाते हैं और दूसरा ये जो हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष भाव आ जाता है या उनके प्रति घृणा भाव आ जाता है, ये सब जब आता है तब बाबा से हमारा योग टूटता है। तो वो शक्ति जो रूहानी शक्ति हमारे अंदर भरनी चाहिए, वो फिर हम नहीं महसूस कर पाते। बाबा का प्यार भी फिर हम अनुभव नहीं कर पाते। बाबा का प्यार ऐसा है जो न्यारा और प्यारा, प्यारा बने लेकिन न्यारा होकर के प्यारा बनेंगे तो फिर बाबा का भी स्नेह प्यार हमें अनुभव होता है। तो जन का जो भी भाग्य है उसको हम इस तरह से अनुभव करें। जो भी सच्चाई सफाई है हमारी, बाबा कहता है उसको हमें कैसे प्रकट करना है, उसका भी एक तरीका है कि अगर हम सत्य बोलते हैं तो कई बार जो सत्य बोलते हैं वो थोड़ा उसमें जोश में आ जाते हैं, जोश में आकर के अपनी बात कहते हैं कि मैं तो सच बोलता हूँ ना, मैं थोड़ी गलत बोल रहा हूँ, या उसको थोड़ा गलत तरीके से, यानी जिसको कड़वा लगने वाला सत्य बोलते हैं, ऐसा सत्य बोलते हैं, तो ऐसा हमें नहीं बोलना है। एक संस्कृत में कहा गया सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात ना बुरियात सत्यम अप्रियम, सत्य बोलो लेकिन अप्रिय लगने वाला सत्य मत बोलो। तो अगर ऐसा सत्य हम बोल रहे हैं तो वो फिर अगर हम वो झूठ बोल रहे हैं कोई, लेकिन अगर वो मीठा लगने वाला झूठ बोल रहे हैं तो उसको लोग ज्यादा पसंद करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि गुड़ नहीं देते हो तो गुड़ जैसा मीठा तो बोलो, है ना। तो हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, तो भले ही हम सच बोल रहे हैं लेकिन वो सच भी मधुर सच, सुख देने वाला सच होना चाहिए। फिर वरदाता राजी हैं, ये था भाग्य विधाता राजी है। फिर वरदाता राजी हैं, उसकी विधि क्या है, उसको हम कैसे राजी कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं उसकी विधि है एक व्रता होना, जैसे पतिव्रता कहते हैं ना। तो केवल पतिव्रता नहीं लेकिन सर्व संबंधों से एक व्रता। तो बाबा से हमारे सर्व संबंध हैं, तो बाबा ही मेरा संसार है। तो सदा अगर एक बाबा, एक बल, एक भरोसा है, तो वरदानों से हम पल रहे हैं, वरदानों से हम चल रहे हैं। बाबा के तो भंडारे भरपूर हैं, हम जितना ले सकें बाबा से, वरदानों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन वो राजी होना चाहिए, तब वो वरदान हमारे लिए हैं ही हैं बाबा के। तो कई बार क्या होता है, बाबा को हम थोड़ा सा इस तरह से कहते हैं, बाबा आप तो निराकार आकार हो, सदा बाबा से तो योग नहीं लगा पाते, लेकिन मन किसी बात को लेकर भारी है, मन परेशानी में है, या कोई सेवा का ही काम है हमारा, तो कोई तो साथी चाहिए, है ना, कोई सखी बहनों के लिए, दोस्त भाइयों के लिए कोई सहारा जिसको हम अपने दिल की बात कर सकें, कोई एक तो चाहिए। क्योंकि ऐसे समय पर बाबा से योग ही नहीं लगता है, जैसे कहा ना बाबा से योग लगाना है तो वो स्थिति बनानी पड़ती है, लेकिन बाबा से योग ही नहीं लगता है। और अगर हम बाबा को सुनाते भी हैं तो जवाब नहीं मिलता है, तो फिर किसी साकार का सहारा तो लेना ही पड़ेगा ना। तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, चाहिए या नहीं चाहिए, हाँ सोच रहे हैं ना। तो बाबा हमें क्या कहते हैं कि अगर आपने किसी को भी सहारा बनाया तो बाबा किनारे हो जाता है, क्योंकि आपने किस पर भरोसा कर लिया, एक बल एक भरोसा नहीं, किस पर भरोसा कर लिया कि अब बाबा की बजाय कोई भी बात आई, असली परीक्षा तो वही है ना, कोई बात आए और तब हम बाबा को याद करें और बाबा हमारे लिए हाजिर है। बाबा तो कहते हैं ना, आप दिल से कहो मेरा बाबा आ जाओ तो बाबा आपके लिए हाजिर है। अगर हमने बाबा को जी हुजूर किया है तो हुजूर हमारे लिए किसी भी समय कहीं भी हाजिर हो सकता है। तो बाबा कहते हैं जब मैं भक्तों को अनुभव कराता हूँ, जो मीराबाई थी या जो भी ऐसे भक्त हुए, उन्होंने भी निराकार आकार परमात्मा को साकार में अनुभव किया, तो आप तो डायरेक्ट बच्चे हो। तो केवल ये समझना नहीं कि सर्व संबंध हमारे बाबा के साथ है। एक होता है दिमाग से हम समझते हैं ना, हमें नॉलेज है, लेकिन एक होता है हमने दिल से अनुभव किया है कि सचमुच बाबा ही हमारा सर्व संबंधी है और जिस समय जिस संबंध की जरूरत है बाबा हमारे लिए हैं, और उस समय हमने बाबा को यूज किया और बाबा फिर कैसे हमें मदद करता है वो तो फिर हम खुद ही अनुभव कर लेते हैं। वो ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं पर बाबा ही याद आए, है ना, बाबा का ही भरोसा हो। तो अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम आत्मा के साथ अपना हिसाब किताब बना लेते हैं, वो कर्म बंधन जुड़ जाता है। लेकिन कर्म बंधन को तोड़कर अभी हमें कर्मातीत बनना है, और इसीलिए बाबा हमें ये श्रीमत याद दिलाते हैं कि सदा एक व्रता होकर चलने वाले, चाहे जो स्थिति आ जाए, जो परिस्थिति आ जाए, लेकिन एक बाबा में ही हमारा भरोसा है। सदा सदा निश्चय बुद्धि है हम तो हमारी विजय है ही है, और इसीलिए कहते हैं सत्यमेव जयते। जो सत्य है उसकी विजय ना हो, या अंतिम विजय सत्य की ही होती है। जैसे कहा ना, सत्य की नाव हिलती है डुलती है लेकिन डूबती कभी भी नहीं है। मुश्किलें आ सकती हैं, हो सकता है, वही जैसे कहा बाबा ने कि कुछ ना कुछ पेपर परीक्षा तो होंगे ना, तभी तो हम विजयी कहलाएंगे। बिना ही परीक्षा दिए आप कहो कि मैं विजयी हूँ, दुनिया में भी जो क्लास में पढ़ते हैं अगर बिना परीक्षा दिए कहें कि भाई मैंने 12वीं पास कर ली, तो मानोगे आप? नहीं मानेंगे ना, परीक्षा तो पास करनी पड़ेगी तभी वो डिग्री मानी जाएगी। तो यहाँ भी हम क्या बन रहे हैं, कितनी ऊंच प्राप्ति बाबा हमें करा रहे हैं, विश्व के मालिक विश्व की बादशाही हमें मिलने वाली है। तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जो भी परीक्षाएं हमारी आती हैं उसमें हम विजयी होंगे। तो वो विजय का आधार ही है सदा बाबा पर एक बल एक भरोसा, बाबा पर हम पूरा निश्चय बुद्धि हैं, तो वो सत्य का आधार लिया हमने। और ऐसे ही सत्य के लिए कहते हैं सत वचन महाराज। सत वचन महाराज यानी वो जो भी सुना रहे हैं, कथा करने वालों को कहते हैं ना कि आप जो भी कह रहे हैं वो झूठ सुना रहे हैं, भले जो भी कहानियां सुनाते हैं झूठी कहानियां सुनाते हैं, लेकिन फिर भी उसको सत्य मानकर अपने जीवन में चलते हैं भक्ति में। लेकिन वो यादगार यहाँ की ही है। बाबा कहता है जब आप उस सत्य स्थिति से जो भी वचन बोलते हो वो आत्माओं के लिए सत्य हो जाते हैं, यानी वो वरदानी बोल हो जाते हैं। जैसे बाबा को देखा हमने, बाबा ने जिनके लिए जो कहा वो सचमुच उनके लिए, उस समय भले उनको समझ नहीं आया लेकिन उनके जीवन के लिए बाद में वो सचमुच सत्य हो गए, वरदान हो गए। हमारी दादियां भले ही वो बहुत समय नहीं दे पाते थे लेकिन वो जो भी बोल जिसके लिए बोलते थे, जैसे हम कहेंगे महारथियों के जो बोल होंगे वो कभी भी व्यर्थ नहीं होंगे, अनमोल वचन होंगे। तो हमारे मुख से कभी भी ऐसे वचन नहीं निकले। सत्य वचन कहने का मतलब क्या है, उन वचनों को हम सत्य वचन कब कहेंगे? अगर ऐसे वैसे वचन निकल गए जिससे किसी को दुख पहुंचे या किसी का अपमान हो जाए, तो फिर वो सत्य वचन तो नहीं हो सकते। तो ये लक्ष्य हमें रखना है कि जो यादगार बनी है वो ऐसे ही वचन हमारे मुख से निकले। तो मन वचन कर्म में सत्यता माना, जो हम सोचते हैं वही बोलते हैं और वही हम करते हैं। कहना और करना एक समान हो, ऐसे नहीं कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, ऐसे भी होता है ना। इसीलिए कहते हैं उपदेश देना तो बहुत आसान होता है क्योंकि उपदेश देने में क्या मुश्किल है, लेकिन उसी को करना उस पर चलना, अगर हम चल रहे हैं तो हम सत्य हैं, तो हम वो सत्य कर रहे हैं। तो मन वाणी कर्म तीनों में ही वो सच्चाई हो। तो ऐसे बाबा को राजी करके दिल तख्त नशीन बनना अगर हम करते हैं तो सचमुच हमारी ये ब्राह्मण जीवन सहज होती है। हमें लगता ही नहीं कि हमें कोई मेहनत करनी पड़ रही है और ऐसे लगता है कि बाबा खुद ही चला रहा है, बाबा हमें उड़ती कला के द्वारा उड़ाते हुए इस संगम युग में ले जा रहे हैं। ओम शांति।
प्यार करूं बाबा एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, एक तेरे ही गुण गाम एक तेरे ही गुण गाम
एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा। Good.